तब तो इन लोगों से समाज से हम लोग कट जाएंगे, समाज के लोग हमको ग्रहण नहीं कर सकते। जितनी भी अच्छी बात हो, क्योंकि समाज के अनुकूल हम नहीं रहेंगे तो वो ग्रहण बातें कुछ नहीं करेंगे, डरेंगे। इसलिए जान बूझ करके उन्होंने लाल कपड़े, कुर्ता भी, जमा भी, धोती भी, जैसा है साधारण बन करके। और आज तो आधुनिक जो चीजें भंशन जिनका हुआ है उनको भी व्यवहार में लेते हुए, एरोप्लेन में चढ़ना या मोटर में चढ़ना, जल्दी से जल्दी से लोगों के साथ में बातचीत करना, इस प्रकार से आरम्भ हो। उन्होंने कहा जैसे बड़े बड़े लोगों के यहाँ जाओ, कार में जाओ, पैसा नहीं है, हम सब किराए में ले लो, लोग कहेंगे कि हाँ ये कोई अच्छे आदमी है, तब तुम्हारी जो एक बात सुनेंगे, नहीं तो सुनेंगे ही नहीं। इसलिए मैंने कहा जैसे केवल संस्कृत पढ़ने से नहीं होगा, अंग्रेजी भी, हिंदी भी और भी कुछ रूप में, जैसे हम लोग उनसे अच्छी तरह से बात करते हैं। केवल संस्कृत पढ़ लिया, संस्कृत में बातचीत कर लिया, अब तो संस्कृत को बेटर लैंग्वेज बतलाने लगे, अच्छे उपदेश इसमें कभी नहीं, पश्चात पहले इसका आदर करें। इसलिए उसको सब चीजों को लेकर के आधुनिक शिक्षित पढ़े लिखे लोगों के पास सब धीरे 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 विश्व में इसका प्रचार किया। यहाँ के लोग विदेशों में नहीं जा सकते थे, इसका प्रचार नहीं कर सकते, यहाँ कभी अच्छे अच्छे लोगों से मिल नहीं सकते, इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता। अब वो धीरे 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 पढ़े लिखे लोगों में प्रवेश कर, धीरे धीरे आप लोग जैसे सज्जन लोग आने लगते, समझने लगे दूसरों से भी। आप भजन का ये तात्पर्य नहीं है ये सब कुछ छोड़ दिया, संसार छोड़ करके, संसार झूठा है, स्वप्नमत है, ऐसा नहीं। जो जिस स्थिति में है, जहाँ भी है, जिस रूप में है, जिस स्टेटस का है, पढ़ा लिखा है, गरीब है, धनी है, अमीर है, जो जहाँ है वहीं से भगवान को थोड़ा सा माने, अंततः सवेरे शाम उनको सिर झुकाए। हम उनको नहीं देखते हैं कि तो वो तो हमको देखते हैं। कोई न कोई एक शक्ति है जो विश्व का सृजन करती है, सूर्य को भी बिनाते हैं, सूर्य में प्रकाश डालते हैं, गर्भ में हमें पालन पोषण करते है, कोई शक्ति तो उसी को कृष्ण मानते हैं। कृष्ण मैंने होता है आकर्षक, विश्व ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आकर्षक, बड़ा सुंदर रूप हम देख लेंगे। और उसमें एक चोरी याद रखनी चाहिए, हम ये शरीर नहीं है जिसको अभी सजा रहे हैं, जिसको खिला पिला रहे हैं, जिसके लिए सब कुछ करते हैं, ये फिजिकल जो बॉडी है ये मैं नहीं हूँ, ये याद रखनी। आज न कल न परसों इसको हमको छोड़ना है, जरूर छोड़ें, चाहे हजार चेष्टा करो वो छोड़ना हो। यहाँ तक ही संसार में हमने जो कुछ संग्रह किया है सब कुछ को छोड़ करके इसमें से आत्मा निकलेगा, ये निश्चित ध्रुव सत्य। और कोई सत्य है चाहे नहीं है, भगवान है कि नहीं वो तो पीछे की बात है, किंतु ये संसार को छोड़ना मृत्यु अवश्यम भाव। इसलिए ये समझो जैसे इस जगत का कुछ भी तुम्हारे साथ में नहीं जाएगा तो उसके लिए बेईमानी, झूठ, चोरी ये सब मत करो। भगवान ने वेदों में, शास्त्रों में जो कुछ नियम बनाए हैं उसको नियम लेकर के चलना, अपने चैरिटी के गिल्ड फ्रॉम होम, पहले माता पिता को आदर करो, यहीं से आरंभ करो, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने हमको जन्म दिया। अच्छा वहीं से आरंभ करो, मैया ने पालन पोषण तो किया, ये बात तो ठीक है, यद्यपि मैया और मैया के मैया बाप को भी पालन पोषण करने वाले वो हैं, पेट में मैया क्या करती है जानती नहीं, जैसे ये क्या है कि नहीं, तभी उसका पालन पोषण करने वाले, हमको बुद्धि देने वाले ये संसार वाले को, ये बुद्धि कहाँ से, बुद्धि में देखते हैं जैसे किसी की कम है, किसी की अधिक है, ये क्यों, कोई तो दिन भर परिश्रम करता है वो रोटी नहीं पाता, आ कोई संसार बिल्डिंग में पड़ा हुआ बड़े आराम के साथ में जीवन, ये सब का कारण ढूंढना चाहिए। यदि ये सब कारण, ये दुख क्यों होता है, शरीर क्यों छोड़ना होता है, कहाँ से हम आए हैं, क्यों आए, मृत्यु के बाद हमें कहाँ जाना पड़ेगा, संसार के कोई भी चीज को हम अपने साथ नहीं ले जा सकते, यह प्रश्न यदि किसी के हृदय में नहीं उठा, मन में नहीं आए, तो समझो जो वो मनुष्य नहीं वो पशु में। और हमने यही अंतर, खाते पीते मर जाते हैं। हम लोग इस बात को सोच सकते हैं कि हम कहाँ से आए इस जगह, पशु नहीं सोच सकते, क्यों आए, कहाँ जाना है, क्या हमको करना चाहिए। पशु खाएगा, पिएगा, सोएगा, बाल बच्चे पैदा करेगा, उनको पालन पोषण करके मर, हमारे लिए कुछ कर्तव्य है। वो कर्तव्य जो पशु करते हैं, हमारा वो कर्तव्य नहीं है, वो तो हम करेंगे ही, किंतु शास्त्रों ने, हमारे मनुष्यों ने रिसर्च करके बहुत दिनों के बाद में हम कैसे सुखी और शांति हो सकते हैं, ये जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए वो करना, ये प्रश्न हृदय में उठना चाहिए। नहीं उठता है, समझे पशुओं में और हमने कोई भी अंतर है। और जब यह प्रश्न उठा, कहाँ से आए, क्यों आए, क्या करना चाहिए, क्या यही कर्तव्य है, यही पशुओं का जो हमारे पशुओं से हमारा क्या अंतर, खाते पीते हैं वो भी, खाते पीते हैं वो भी, सोते हैं, इसमें कुछ दिनों के लिए प्रतीत होता है जो कि सुख है, किंतु इसमें सुख भी। इसलिए ये सब प्रश्न हमारे हृदय में उठने चाहिए और उसका सॉल्व नहीं होना उसे, जो इसका सॉल्व कर सकते उसके अनुसार में अपना जीवन बनाएंगे। चलना चाहिए ना,
कर्म और कर्म, पहले इसको समझिए, नहीं तो समझेंगे। पहले हम लोग कर्म से समझते हैं, वेद शास्त्रों में हम लोगों के लिए सुख और शांति के लिए संसार में क्या करना चाहिए ये बतला दिया, अपने से शांति से, किंतु मनुष्य इसको ठीक से पकड़ नहीं पाता, इसलिए गीता ने इन चीजों को समझाने के लिए बताया कि जो कुछ भी हम करते हैं वो कर्म नहीं होता, कर्म जब होगा तब जो कुछ भी हम करते हैं अपने फल लेने के लिए, अपने के लिए जो कुछ करते हैं वही कर्म है। जैसे मैंने खाई, मैंने खाया, इसमें कर्म छिपा हुआ है, इसमें एक सब्जेक्ट है, एक धर्म है, क्रिया है, मैंने खाया, इसलिए मैंने खाया ये कर्म नहीं हुआ, मैंने आम खाया तो ये मैं आम जो खाया कौन खाया, मैंने, इससे भी आपने इसके लिए अच्छा लगा इसलिए खाया, इससे ये कर्म हुआ। किंतु मैंने भगवान की आरती करी, तुमने जो भगवान की आरती करी किसके लिए, अपने लिए किया, किसी आरती इसलिए भगवान के लिए भी आपने किया, किंतु अपने ले लिए, किंतु हाँ इसमें दुर्गत एक भाव है। मैंने यदि इस आरती को ही भगवान की और वो प्रसन्न हो मैंने क्या, और प्रसन्न होकर के हमको ये संसार की चीजें हमारे लिए दी, तब तो ये कर्म हो गया, भगवान की उपासना होने पर भी कर्म। यदि ये रहे कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए
उनकी सेवा के लिए मैं उनकी आरती कर रहा हूँ, तो ये कर्म नहीं होकर के भक्ति हो जाए। और मैंने ध्यान लगाया, क्या ध्यान लगाया, मैं ब्रह्म हूँ, मैं संसार का कुछ भी नहीं, ध्यान लगाया। किंतु ये जो ध्यान हुआ किसके लिए, अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं एज ए ड्यूटी बाउंड, संसार से हम ऊपर हैं, मैं ब्रह्म हूँ, इसलिए ये ज्ञान हो गया। जब किसी चीज को उद्देश्य नहीं करते करते हैं, कोई अपने फल के लिए नहीं करते, तो वो हो जाएगा ध्यान। जब अपने लिए करते हैं वही काम, तो हो जाता है कर्म। यदि वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं किंतु उसमें अपना कुछ लाभ ना हो, तब उसको करते हैं। यहाँ पर वह जो कर्म जो किया है साधारण रूप में, जो हम अपने लाभ के लिए करते हैं, क्या करना चाहिए, सवेरे उसका माता पिता को करो, यह ना, इससे क्या होगा, तुम्हारे लड़के भी तुमको ऐसा ही जब देंगे तो तुमको ऐसा करेंगे तो तुम सुखी रहोगे। तुम दूसरों का उपकार करो, इससे क्या होगा, हमारे बच्चे भी सीखेंगे, तो सबके लिए उपकार के लिए। इस तरह से ये जो चीज है उपदेश, जो शास्त्रों में दिया देव शास्त्रों में जीवों को करने के लिए, इसको कहते हैं बगीचा छाया के लिए लगाओ, दूसरों को कुछ दो जिसे तुम्हारा पुण्य है। सवेरे उठ करके, जिस तरह से उठ करके पृथ्वी को प्रणाम करो, स्वच्छ बोलो, झूठ मत बोलो, ये सब चीजें जो हैं इसको कहते हैं कर्म, जो अपने लिए कर। जब उस कर्म को नहीं करता, जब उधर में लग जाएंगे तो अपना इसमें तक रख नहीं सकते, इसलिए बहुत बाधक है ये, जीवन भर याद रहेगी और वो आप छोड़ देंगे कम याद रहेंगे, याद ही नहीं रहेगी, उसका जो सहारा लेगा वो थक जाता है, और जो इसमें सहारा लेता है वो जीवन, हम लोग कभी नहीं सहारा लिया उसमें, इसलिए जो कुछ सुना हमने एकदम यहाँ पर धर लिया और हम कह रहे हैं और बहुत गहन चोरी है। जो वेद उपनिषद शास्त्रों ने हमारे कल्याण के लिए जो आदेश दिया गया है करने के लिए, उसको कहते हैं कर्म। यदि हम इनको नहीं करते हैं तो इसको कहते हैं अकर्म, जब हम करते नहीं, और जब इसके ठीक विपरीत करते हैं, झूठ मत बोलो किंतु झूठ बोलो, तो ये क्या हुआ, विशेष मैंने एकदम दुर्भोग का। इसलिए ये तीन चीजें हैं, कर्म को भी ऐसे बनाया गया है जिससे कि हम क्रमशः भगवान के लिए कर्म करते हुए आगे बढ़े। कर्मों का ये नहीं कि कर्मों में डूब जाए, कर्मों को हमारे शास्त्रों ने ऐसे बनाया है, वैदिक जो कर्म है देव जी के लिए आगे, वो धीरे धीरे इस रूप में है कि कोई तो ज्ञान के लिए करता है मुक्ति के लिए, और कोई करता है भक्ति के लिए करता है। अब यहाँ पर जो बतलाया गया है कर्म में अकर्म देते, अब मान लें कि कोई भी कर्म किया, जैसे आपने रसोई बनाया, रसोई बना करके आपने खाया, तो ये क्या हुआ, कर्म हुआ ना? अब इसमें अकर्म कैसे देखेंगे, दो तरीके हैं, एक तो ये देखो जो मैं शरीर नहीं इसलिए मैंने इसको नहीं खाया, कौन का कौन खाया, मैटर को मैटर ने खाया, इसलिए हमसे इसे कोई संबंध नहीं, शरीर है ना, शरीर ने उस चीज को खाया, अच्छा तो जड़ ने जड़ को खाया, हम जो चेतन है इससे अलग है, ये अकर्म हुआ ना, हम जो कर्म कर रहे थे खा रहे थे, हम कभी नहीं खाते हैं, ये आत्मा नहीं खाती, ये खाता कौन है,
शरीर,
इसलिए जड़ ही जड़ में व्याप्त हो रहा है, हमको उससे कोई मतलब नहीं। जैसे हम देख रहे हैं, हमने देखा इनकी तरफ तो हमने देखा कि ये आंख भी जड़ है, ये इनका शरीर भी जड़ है, ये जड़ ने जड़ को देखा, हम अभी आत्मा है उससे हमने कुछ, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, इसमें आसक्त नहीं है, तो ये कर्म में अकर्म। समझ रहे हैं, आप दुकान कर रहे हैं, दुकान को देखिए, ये जड़ जड़ के लिए ये जड़ सब इसमें रम रहा है, हम आत्मा से इसका कोई नहीं एक हुआ, इसको कहते हैं ज्ञान,
ज्ञान से देखना कर्म में अकर्म
अकर्म, किंतु अकर्म में कर्म में अकर्म एक और देखना है उन्नत भाव, अकर्म कहते हैं जो कर्म नहीं है भक्ति है ना? अब उसको कैसे देखेंगे, जड़ तो जड़ खा रहा है किंतु हमने उसको भगवान को पहले निवेदन कर दिया ना? और निवेदन करके उसका प्रसाद स्वरूप जो रह गया है वो सब वैष्णव लोगों को भगवान की जो दिया है उनसे दे सकते, जो रेमिनेंट है महाप्रसाद उस चीज को हम ग्रहण कर रहे हैं किस रूप में, ये शरीर नहीं रहने से ये शरीर मंदिर है, हमारी आत्मा नहीं रह सकती, इसलिए आत्मा से परमात्मा की सेवा करने के लिए भगवान का सेवा करने के लिए अभी साधन के लिए इसकी आवश्यकता है, यदि नहीं ये ठीक रहेगा, इसलिए हम उसको जो खा रहे हैं ठाकुर जी को दे करके प्रसाद खा कर ले रहे हैं, ये किस लिए, भक्ति की पुष्टि के लिए, हम भगवान का भजन करेंगे नाम करेंगे, जब हम 10 दिन नहीं खाएंगे तो क्या होगा, नाम ले सकेंगे, इसलिए हम इसको भगवान का प्रसाद ले रहे हैं, इससे हमारा हृदय निर्मल होगा और भगवान में चित्त लगेगा, नाम में चित्त लगेगा, उनकी कथाओं में लगेगा, उनकी सेवा में लगेगा, तो ये हो गया भक्ति के लिए। तो इसलिए कर्म में दो रूप से अकर्म देखें, क्या एक तो ज्ञान वाला इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, और दूसरा वाला हो गया क्या
भक्ति वाला,
इसलिए अकर्म दोनों में ही, भक्ति में भी अकर्म है और ज्ञान में भी, ये अकर्म से अलग चीज है, किंतु याद रखेंगे भागवत में दिया गया है निष्कर्म मत अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान फलम, ये जो तत्व ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान है, जो मैं जड़ीय चीज नहीं हूँ, मैं मरने वाला हूँ, अजर अमर नित्य हूँ, शाश्वत चेतन वस्तु हूँ, ये जो ज्ञान है, यदि यदि ज्ञान भी भगवत समर्पित न हो अर्थात तो मैं भगवान का हूँ ये न होकर के मैं भगवान हूँ या मुक्ति के लिए कर रहा हूँ, तो इस ज्ञान की भी शोभा नहीं है। फिर कर्म जो आदि अंत और मध्य तीनों में ही बेकार का है, इसकी शोभा नहीं होती, इसलिए हम ये जो कुछ करेंगे भगवान की भक्ति के लिए करेंगे, इसलिए अकर्म कर्म कभी भी शोभित नहीं होता है, उसका कभी भी मंगल नहीं होता है जब तक वो भगवान को अर्पित
भगवान
कोई भी कर चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये सभी तो कर्म, हम बिजनेस कर रहे हैं, वाणिज्य कर रहे हैं, यदि भगवत अर्पित करके नहीं किया, ये सब कुछ भगवान का है, मैं भगवान का सेवक हूँ, इन चीजों से भगवान की सेवा करता हूँ, तब तक ये अकर्म रूपी ये भक्ति है, और जब ऐसा नहीं करते हैं वो कर्म है हमें बांधेंगे, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत कर्म होते हैं, जो कर्म भगवान के लिए अर्पित नहीं है, जो भगवान के लिए नहीं किए गए हैं, वो कर्म सब क्या करेंगे, बांधेंगे मैंने किसको बांधेंगे,
आत्मा को,
तो बांधने से होगा क्या,
शरीर
में आसक्त होकर के देहात में बुद्धि होकर के मैं जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहूंगा, कभी भी भगवान के हानि आत्मा का रियलाइजेशन नहीं, तो इस तरह से समस्त कर्मों में चलते हैं ना, अब उसमें भक्ति कैसे लगाए और कर्म कैसे देते,
परिक्रमा
आप जा रहे हैं दुकान में तो इसको परिक्रमा देखेंगे कि नहीं, या भगवत धाम में जा रहा हूँ देखेंगे तुम
फल भगवान के लिए अर्पित हो जाए,
कैसे अर्पित हो, कैसे अर्पित, आप दुकान में जा रहे हैं, इस जाने को भगवान की सेवा में कर रहा हूँ, कैसे करूँ,
फल से हमारा संबंध नहीं है, हमारा तो कर्म से संबंध है, और जो फल है वो भगवान का है, फल से हम संबंध नहीं रखेंगे, अटैचमेंट नहीं
रखेंगे, नहीं नहीं नहीं, फल तो वो जरूर संबंध रहे, क्या हुआ
देखिए
पीछे
से आपको
कभी कभी निकलती है
ऑटोमेटिक अभी होगा तो बंद कर
फल मारा फल आसन दे सकते हैं कि उधर नहीं जाएगा
नहीं जाएगा
और
क्या मतलब
दुकान
कैसे
मान लेते आप दुकान में जाए आप उसको ये भी नहीं समझ रहे कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ माने मैं मंदिर में जा रहा हूँ ठाकुर जी की सेवा कर आप तो जा रहे हैं अपने कर्मशाला में दुकान में जा रहे यदि ये कहे जैसे हम फल की आकांक्षा नहीं कर तभी ये ठीक नहीं
और मन में अगर वो स्मरण भगवान की लीलाओं का बना रहे हो और कभी
नाम का बना रहे हो स्मरण है आप जा रहे हैं तो दुकान में
दुकान पे हाँ वहीं काम कर रहे हैं
वो संसारी चीज के लिए नहीं वहाँ पर ये समझिए ये दुकान मेरी ही है जी ये प्रभु की दुकान है प्रभु को ये समर्पित है हम भी प्रभु के समर्पित हैं हमारा जो कुछ है वो संसार हमारे जो कुछ हैं वो सब प्रभु के समर्पित इसका जो जो कुछ है ये सब प्रभु की सेवा के लिए है तब तो वहाँ जाना भगवान के लिए सचमुच में आता झूठा झूठा करेंगे तो झूठा करेंगे कल्पना से नहीं
भगवान को भगवान के समझिए सब कुछ भी समझे
अपनी पत्नी को भी समझिए ये कृष्ण की सेवा बच्चों को भी सेवी कोई वैष्णव आ गया है तभी उसमें से लेकर के कुछ सेवा ये नहीं जैसे ये ही हमारी है और दूसरा कोई नहीं है या हमारा बच्चा ही यही भगवान का है ऐसा नहीं सचमुच में जनक की भांति या भक्तों की भांति पांडवों की भांति जैसे नाम किया उनकी सेवा के लिए कृष्ण आए कृष्ण की सेवा के लिए लग गया उनका राज्य पास था उनके पास बच्चे सब कुछ भगवान थे वो भवन में उनका सब बना था तब वो जो वहां पर जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं भगवान के पास के सेवा के लिए तो जा रहे हैं इसलिए सचमुच में ऐसा भाव तो वो कर्म नहीं किया तो इसलिए इस कर्म में उसको अकर्म को देकर इस तरह से जहाँ भी जो कुछ भी कर्म हम करते हैं
इस कर्म में हमारा अकर्म कौन सा
हुआ बताया ना अकर्म दो प्रकार का हुआ एक हुआ ज्ञान के द्वारा मुक्ति की तरफ में चलने वाला जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है दुकान हमारा कुछ संबंध नहीं है ये शरीर उसमें बढ़ रहा है शरीर जा रहा है हम छोड़े जा रहे हैं
इसमें धोखा हो जाता है
ये इसीलिए तो समझा रहा हूँ जैसे समझो ये कर्म अकर्म दो प्रकार का
नहीं ये जो ज्ञान वाला अकर्म है ना इसमें हम चीट कर जाते हैं अपने एक जमाने में ऐसे ही समझता था अगर मैं मीट खाता हूँ तो मीट मेरा शरीर खा रहा है आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं है आत्मा से निर्लिप्त है तो वो गलत काम नहीं कर रही है गलत काम नहीं कर
वाले में कोई संभावना नहीं है मिसगाइड होने की संभावना है
भक्ति वाले
तो हम लोग भक्ति की तरफ में करेंगे अर्थात कर्म में भक्ति देखेंगे अकर्म देखेंगे मैंने कर्म नहीं है किंतु कर्म नहीं है वो दो चित्र आता हुआ एक ज्ञान हुआ और एक
भक्ति
ये दोनों ही अकर्म है किंतु पहले वाले से दूसरा जो स्टेज है ये बहुत इसलिए सब कर्मों में हम ज्ञान रूपी अकर्म न देकर के सब कर्म हम देख रहे हैं क्या देख रहे हैं एक सुंदर लड़की खड़ी स्त्री खड़ी सुंदर बगीचा है सुंदर कलकल का एक नदी है उसके किनारे सुंदर उपवन है उसमें कोयल एक बैठी है सुहाग रही मोर उसमें एक पंखों को ऐसे कर करके मोरनी के साथ में नाच रहा है क्या देख रहे हैं देख रहे हैं कि आंख खोला देखा अब इसको अकर्म कैसे देख ये क्या हुआ ये क्या देख रहे हो
अगर इस ये एक जीवन में घटना हो रही है वो देख रहे हैं अब
संसार की लीला कैसी है तुम्हें सुंदर प्रभु ने बनाया है प्रभु का राज्य ऐसा है प्रभु अपनी क्रीड़ा करने के लिए कैसे सुंदर सुंदर चीजें बना रहे हैं ये तो वृंदावन मालूम होता है ये नदी नदी
यमुना जी
ये जो उपकुल है और ये वन है
ये बन नहीं, उस ब्रह्मन ये मोर कहाँ से लाते हैं, कोल कहाँ से जुड़ते, ये तो बनना बस एकदम सन्न है।
ऐसी चीज तुम्हारा बड़े आनंददायक है
ना,
परिचय अगर कहीं कष्टदायक हो तो मन को
जल्दी को समझा जब आप कितना सुंदर है चलू उसमें आनंद ले लू तो गया। इसलिए कर्म को कोई भी कर्म हो उसको भी महाप्रभु जो तो देखे नदी माने काले नदी, महाप्रभु जहाँ जहाँ देखते हैं नदियाँ देखते हैं तो अरे ये यमुना जी कृष्ण कृष्ण करने
अगर स्वाभाविक रूप से आए तो ठीक है,
स्वाभाविक रूप से न आए तो भी तुम कहो मानसिक रूप में उसको देखने की चेष्टा करो वो धीरे धीरे हो चुका
जड़ भाव की जगह तो भक्ति
सब वक्त ही तुमको कृष्ण 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 किया, इसलिए जड़ में तो वो देखो कर्म में वो देखो अकर्म देखो मैंने भक्ति और अकर्म में कर्म देखो, अकर्म में कैसे देखेंगे भक्ति में कर्म कैसे देखेंगे, हमारा जितना ही भक्ति है ये सब यही हमारे लिए कर्म है, कर्म दूसरा कुछ नहीं, हम जो कुछ कर रहे हैं प्रभु के लिए ही कर रहे हैं, यही हमारा कर्म है यही हमारे भक्ति, दोनों को चेक करते
हैं ये कर्म भी हो गया कर्म
देखिए और अच्छी तरह से समझो भागवत में बदलाया है श्रेयस्य श्रेयस्य जीवों के लिए दो चीज श्रेय और
श्रेय
प्रेयस को कहते हैं जो हमारे पास है चीज नहीं है, धन नहीं है, रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, सुंदर स्त्री नहीं है, बाग बगीचे नहीं है, सुंदर पति नहीं है, सुंदर लड़का नहीं है, बिजनेस सुंदर नहीं है, सुंदर कार नहीं है, सुंदर और कुछ नहीं है, ये प्रार्थना करने का नाम है प्रेयर। हमारे पास जो कुछ नहीं है उसके लिए प्रार्थना करते, अथवा हमारे पास में है उसकी रक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं तो ये प्रेयर है। हमारे लड़के लड़कियां धन संपत्ति बिजनेस है आदि चाहता नहीं कि ये रक्षा हो कि चाहता कि बिगड़ जाए, चाहता नहीं उसकी रक्षा होनी चाहिए, धन कमाना ही बड़ी चीज नहीं है, धन कमा करके उसकी रक्षा करके उसको बचाए हुए अपना जीवन का निर्वाह उसके शुद्ध से करते चले जाए और मूल चीज है वो ठीक सुरक्षित रहे तब तक ठीक है ना, और यदि वो जो किसी को जो कर दिया है उसी को खा रहे हैं तो कुछ दिन में तो वो बिगड़ जाएगा, इसलिए हमारा जो कुछ नहीं है उसकी प्राप्ति और जो हमारी है उसके रक्षा के लिए जो प्रार्थना कामना होती है उसको कहते हैं प्रेय, प्रेय माने प्राप्ति, प्राप्ति के लिए प्राप्ति इसको कहते हैं प्रेय। प्रेय किसको कहते हैं कि शरीर से कोई संबंधित चीजें न रह करके आत्मा के लिए जो कल्याणकारी है अर्थात भगवान के चरणों में प्रेम है ये प्रेय है। श्रेय कैरव चंद्रिका भी करणम कहाँ है
ना,
इसके तो दर्पण माध्यम है महाप्रभु जी की शिक्षा, क्या ये नाम ऐसे हैं चंद्रमा के समान जैसे रात में कितने प्रकार के सुंदर सुंदर फूल हैं वो खिल जाते हैं, कैसे खिल जाते हैं चंद्र की शीतल किरणों में कुछ अमृत का भाव है इसलिए वो जहाँ जहाँ पड़ता है गंदी और स्पष्ट हो जाता है। वो हमारा जो कल्याण रूपी जो कुमुद है वो नाम रूपी सूर्य के नाम रूपी चंद्र के किरणों से प्रस्फुटित हो जाता है, ये श्रेय है। अर्थात भक्ति ही भगवान के चरणों में ये श्रेय है। श्रेय क्या हुआ संसार की जितनी भी चीजें हैं अथवा संसार से भी मुक्ति रूपी जो चीज है इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं ये हो गया, या उसकी रक्षा के लिए ये हुआ प्रेय, प्रेय हुआ हमारे आत्मा के लिए जो कल्याणकारी जो भक्ति है भगवान के चरणों में प्रेम है ये हो गया प्रेय। प्रेय जो है जो प्रार्थना करते हैं वो यदि श्रेय के लिए हो तो कल्याण हो जाएगा, इसलिए हमारा प्रेय भी जो है वो श्रेय होना चाहिए। अर्थात हम प्रार्थना करेंगे भक्ति के लिए, इसके लिए
अच्छा प्रिय होगी तो किसके लिए? भगवान जी के पास। इसलिए हमारा श्रेय भी प्रिय होना चाहिए और प्रिय भी श्रेय होना चाहिए, समझ रहे हैं? प्रिय भी श्रेय होना चाहिए।
जैसे कहते हैं जिससे महाराज की प्रिय
बदला है महाराज
कामना
भी से मांगी से करते हैं, वो भी भगवान की सेवा के लिए ही पकड़ है। इसलिए हमारी जितनी भी प्रार्थना है, क्या प्रार्थना? कृष्ण के चरणों में हमारा हमारे लिए सुंदर मंदिर हो, ये भी नहीं करना चाहिए, साधारण लोग कर सकते हैं। मंदिर से ही भगवान की सेवा नहीं है, इसलिए हमारा हृदय मंदिर बन गया और उससे भगवान की। इसलिए जितनी हमारी प्रार्थनाएं हैं, हमारा जितना भी कर्म है वो श्रेय है। हमारा दोनों एक श्रेय ही प्रेय हो जाए, प्रेय ही हमारा श्रेय, तब तक तो फिर कल्याण है। कर्म में अकर्म देखो और अकर्म में समझ में आ रहा है।
इसके आगे हमारा जैसे आप आए हो और बाकी सारे काम जैसे अपने आप ही हो रहे हैं, आपका आना मात्र ही काफी है, बाकी तो आपके आते ही सारे काम अपने आप होंगे, तो ये भी अकर्म में अकर्म हो गया नहीं?
ये कर्म में अकर्म हो गया। कैसे?
हाँ।
कर्म सब कर रहे हैं, सब इसको बजा रहे हैं, चल रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, उनकी माला बाजार से भी आ रहे हैं, घर में रसोई भी बन रही है, सभी कुछ हो रहा है, अपने अच्छे अच्छे कपड़े भी पहन रखे हैं, सभी कुछ है, किंतु मूल उद्देश्य है कृष्ण की सेवा। गुरु जी की सेवा तो वही लग होती है ना, जिसमें उनकी भगवान प्रसन्न रहे।
इसके लिए भी महाराज की बार हम अब रहते हैं, जैसे प्रे वर्क काम कर रहे हैं, करते करते उसमें जो कष्ट आते हैं, दूरी आए आते हैं, वो आते हैं उसमें, तो उसमें वो उसको भी अकर्म रूप में देखेंगे,
उसको जब देखेंगे ये भगवान की सेवा है तो उसमें कभी घृणा नहीं है। यदि घृणा आ गई तो सब कुछ
घृणा नहीं थी, कष्ट आते हैं, दूरी बाधाएं आती हैं,
भगवान की सेवा के लिए तो बाधा है आपको, गोपियों को उसके पतियों ने नहीं रोक दिया तो फिर क्या है? अर्जुन को बाधा नहीं है, प्रहलाद महाराज जी को बाधा जीवन भर तो बाधा चलते रहे, मेरा भाई को बाधा नहीं है, उसी तरह से आपके कर्म में बाधा आएगी तो आपका कर्म तो भक्ति का है, भक्ति से अलग मत ले। इस तरह से यही जीवन में उसका अवस्था है, जब भी ऐसा हो सकता है।
इसमें ऐसा नहीं है, जैसे कुछ लोग संसार त्याग के जंगल में जाने की बात सोचते हैं और अंदर से उनकी सारी कामनाएं अभी हैं, बाधाएं आने से हमारा वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, कई बार कुछ लोग
मान लेखी जैसे चले गए किंतु कामना है, किंतु शीघ्र बाधा आई उसको संभाल झेल नहीं सके,
वैराग्य
मन खराब हो गया, चले गए।
अच्छा
वो लोग क्या करेंगे? वो जंगल में जा करके बगीचे बनाए, एक गैया पालनी, एक बछड़ा होगा, दूध होगा, और धीरे 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 वो पशु पक्षियों एक हिरण में प्रेम हो जाएगा, एक कुत्ता पाल लेगा जैसे भाई देखो हमारी रक्षा होनी चाहिए, करते 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 वहीं पर सुंदर सुंदर अपने लिए खाद बना लेगा, पलंग बना लेगा, उसमें और सब अपने भोगों में लग जाएगा, सोचा गया जी भगवान की सेवा है।
इसमें यह नहीं कह सकते कि उसने कहने को तो अकर्म ही हो गया, कर्म छोड़ दिया, पर वो फिर भी सकाम कर्म में लगा हुआ है, अकर्म में यानी कि लगता तो है वो निष्क्रिय हो गया, निरग्नि हो गया, अक्रिय हो गया, लेकिन मन से ऐसा ना होने के कारण
किसी को कहा कि वो अक्रिय नहीं है, निरग्नि नहीं है, वही साधनिक है और वही सक्रिय है, कुछ भी लाभ नहीं है। सचमुच में जो जिस स्थिति में जहाँ है वहाँ से भगवान का, हाँ एक बात करें, इस भक्ति के अनुकूल को क्रमशः ग्रहण करें, जो जो प्रतिकूल होता जाएगा ना उस अंश को, किंतु धीरे धीरे ऐसा करना पड़ेगा जो हमारा प्रतिकूल है वो भी धीरे धीरे अनुकूल हो, इसका नाम है उत्तम अधिकार में जब पहुंच जाता है सब कोई प्रतिकूल ही नहीं रहता है, सब कुछ अनुकूल।
इसका क्या एग्जाम्पल जो आपने बोला प्रतिकूल को अनुकूल,
जैसे विषय लोगों से बातचीत नहीं करना चाहिए, नहीं तो विषय गंभीर हो जाए, उनका दिया हुआ कोई चीज मत लो, विषय लोग जो भगवान के विरोधी हैं, भक्तों के विरोधी हैं, उनके पास से एकदम मिलना नहीं चाहिए। तो ये है मध्यम अधिकार के लिए, उत्तम अधिकार के ऊपर में वो नहीं चीज डाल, नारद जी वहां पर जाकर जाएंगे कंस के यहाँ, जो
भक्त का भी द्रोही है और भगवान का भी द्रोही है। जैसे देशभक्त तो भक्त है, उसका द्रोही है ना, उसका दुहाचरण कर रहा है, भक्तों को मार काट करके भगा दिया, अपने पिता भक्त थे उनको भी हटा करके राज्य ले लिया, उनको जेल में शिकंजे में बंद कर दिया, जितने भक्त थे सब लोगों को भगा दिया, किसी को मार काट दिया, भगवान के लिए दुहाचरण करके कितना को भेज रहा है, उसको मारो, उसको भेज रहा है अगासी को, सबको भेज रहा है, ये भगवान और भक्त दोनों का द्रोही है। किंतु नारद जी इसको नहीं समझते, वो उसके यहाँ चले गए, वो कह रहे हैं सोच रहे हैं कि ये भगवान के लीला में सहायक है, नहीं तो भगवान की लीला नहीं होगी, उससे इससे मध्यम अधिकार से बहुत ऊपर चले गए,
ये अत्याचार नहीं करेगा तो भगवान आएंगे कैसे यहाँ,
इसलिए उसके पास में जाकर कहते हैं बेटा मैं तेरे लिए बहुत चिंतित हूँ, देवता लोग तुम्हारे दिल का षड्यंत्र कर रहे हैं और हरि भी आएगा, तुम सावधान रहो, इसके बच्चों को छोड़ना मत देव जी के, नहीं तो वो बड़े बलवान होकर के आठों यदि आक्रमण एक साथ में करेंगे तो फिर और कौन पहला कौन दूसरा कोई चीज नहीं है, बीच में उल्टा गिनता है, इसलिए सावधान रहो। हमें गुरु जी को खा लिया, हाँ जल्दी से खा लिया, बीच भी हजम कर लेंगे, वो मध्यम अधिकारी अभी नहीं बीच हजम करेगा, और कनिष्ठ अधिकारी एकदम नहीं कर, वो कुछ कुछ कर, इसलिए कंस का संग करना हमारे लिए ठीक नहीं, किंतु नारद जी के लिए तुम बाधा मत दो, उनके ऊपर में कोई अंकुश न लगाओ, वेद शास्त्र उनके ऊपर में कंट्रोल नहीं कर, वो सब कुछ कर, भगवान नहीं करेंगे वो भी कर लेंगे, भगवान उसके यहाँ दया करने नहीं जाएंगे, किंतु नारद जी उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, किंतु इनका प्रभाव उस पर जाया गए और सिद्धार्थ ला करके उसको प्रसन्न कर दिए, उन्होंने सोचा कंस ने अरे ये तो हमारे गुरु ठाकुर हैं, कितनी सुंदर सुंदर बातें बतला गए, और उधर में कृष्ण के पास है ये प्रभु, अब अधिक लीला प्रेस की करने की जरूरत नहीं है, मथुरा के भक्तों और द्वारका के भक्तों का क्या होगा, पांडवों पर शिकायत तो करनी है, जल्दी से यहाँ पर जल्दी से कंस को मुक्ति दिला करके और वहां पर पहुंची द्वारका में, तो ये उनके लिए हम लोगों के लिए नहीं, मध्यम अधिकारी के लिए कुछ दूसरा, उनका भी प्रतिकूल और अनुकूल दोनों है, और उनको प्रतिकूल कुछ है ही नहीं है, अब कनिष्ठ अधिकारी का सब कुछ प्रतिकूल है, केवल थोड़ा सा चीज भगवान की पूजा करते हैं ये और बाकी सब, इसलिए मध्यम अधिकारी में कोई व्यक्ति जिन जी जिनको प्रतिकूल देखता है और अनुकूल देता है, अनुकूल को ग्रहण करता है प्रतिकूल को वो इस रूप में करता है कि हमारी चित्त वृत्ति भगवान और भक्तों का चित्त कहीं नहीं है, भले ही हम कम खाएं, भले ही कम कपड़ा पहने, भले ही लोगों से हम बातचीत नहीं करें, वो मंजूर है, इसका नाम है बैराग्य, बैराग्य दो कारणों से होता है, एक होता है विपत्तियों से हमारे विघ्न बाधाओं से, किंतु वो वैराग्य स्थायी नहीं है, और जब हम अनुकूल ग्रहण करते हुए प्रतिकूल को छोड़ने लगते हैं, अनुकूल को ग्रहण करते हैं, छोटे 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 हमको कोई चीज की आवश्यकता ही नहीं रही, पर कृष्ण प्रेम की कृष्ण बता दी देते हैं, तो ये अपने आप वो सब छूट जाता है और ये स्थायी होता है, तो हमको भी ऐसा ही करना, धीरे 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 प्रतिकूल को छोड़ना होगा, अनुकूल को मैंने दिखाओ,
जो सुनने आते हैं वो प्रतिकूल में लेके उनको ऐसी छोड़ सकते हैं, उनको सॉल करना जरूरी है,
सॉल नहीं करेंगे तो समझ नहीं
सॉल, मतलब उनका जरूर आंसर ले लेना जरूरी है, या अगर हम सोचेंगे संदेह तो नहीं प्रतिकूल भक्ति है तो ऐसी छोड़ दो, जैसे वैष्णव में कोई दोष नजर आ रहा है,
जिन वैष्णव में कुछ दोष है,
दोष नहीं है नजर आ रहा है, क्योंकि हमारे बुद्धि के कारण, दुर्बुद्धि के कारण, या पिछले जन्मों के दोष दृष्टि के संस्कारों से गर्वित होकर हम खाना खा किसी को दोष
नहीं, तो जिसमें दोष नहीं है ऐसे लोगों का किसी प्रकार से देखता है तो ऐसा मत,
चाहे वो निर्दोष हो
फिर भी दोष होता है, तो दोष दिखता है तो ऐसे भक्तों का संग मत, एक तो भक्त है उनमें दोष देखना ही अपराध है, उससे भी तुमको दोष दिखता है तो तुम ऐसे भक्तों में करो जो तुम्हारे ऊपर में उनकी करना है, तुम्हारे प्रति तुम्हारी उनके प्रति श्रद्धा है, दोष दृष्टि है, ऐसे भक्त का।
नहीं तो उनके प्रति चार्ज करेंगे तो दोष दृष्टि के कारण हम ये अपराध करते ही जाएंगे।
ऐसा मान लीजिए थोड़ी सी भी स्थिति है भजन के तरफ में चलने तो ऐसा सब स्थिति नहीं आता, किंतु गौतम के कारण में ऐसा कोई समस्या होता है। उसके लिए विचार करने की कोई जरूरत नहीं, उनका बल्कि अनुसरण करने की जरूरत है, उनका सब नित्य सिद्ध परिकर है।
वो नित्य सिद्ध है,
वहाँ पर जैसे वो सेवा करते हैं और वैसे सेवा करते हैं, और यहाँ के लिए कर्म में अकर्म देखो, वहाँ वहाँ के लिए है
ना,
इन्हीं के लिए इसे पर यहाँ के
महाराज। अभी हमारी
प्रारंभिक स्थिति है जो आप भगवान की तरफ में थोड़ा सा
मुक्त
लेना भी हम बहुत अभी दो अंगों की पीढ़ी है।
नहीं जान मार्ग वाले महाराज जो देखे ना मुक्त हो गया, मुक्ति हो मुक्ति की हमें इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मुक्ति
कल कच्चे साहब कह रहे थे कि दीक्षा ले ली तो मुक्ति तो हो गए,
हरि नाम का अगर लिया है तो
कभी ना कभी तो
ये समझो कि मुक्ति आरंभ होगी, मुक्ति नहीं आरंभ
आरंभ। पहले जैसे संसार में आसक्ति थी अब वैसी नहीं रह करते, बहुत कुछ बदल गया है। वह है ना, अब पहले आप अपना काम छोड़कर यहाँ बैठ कर पढ़े और ये कुछ नहीं, बच्चों को छोड़ दिया, वो आपका काम कर रहे हैं लोग, पहले एक सेकंड भी छोड़ना मुक्ति, ये मुक्ति इनका देखिए अब आरंभ हो गया है, इनका काफी हो गया किंतु थोड़ा सा पकड़े
हम देखना मुक्त मान रहे हैं, हम तो मान रहे हैं इनको,
हाँ मान लीजिए अभी हम अभी नहीं।
उसकी कसौटी महाराज अब हमारे कर्म ही है या और मुक्ति तो जिनमें
नहीं, कसौटी भक्ति है, आपने भक्ति कितनी आई ये विचार कर,
भक्ति उनकी कर्म भक्ति
ये इसमें हम लोग वो थे, हम लोग और सुनने कितना ज्ञान हुआ कि मुक्ति कितना हो गया या कर्म कैसा रहा है, बुरा है कि खराब है, ये हम विचार नहीं करते। हम देखें जो चरित्र व्यक्ति है उसमें हम देखते हैं कि भक्ति कितनी है कि नहीं है, तब उसे हम मापते हैं कि ये क्या चरित्र कर। एक आदमी है सब समय सच बोलता है और कभी झूठ नहीं बोलता, किसी का अपकार नहीं करता, किसी की निंदा नहीं करता, किंतु कथा यही भक्त किसी से भगवान नहीं, हमको और नाम लेने की जरूरत नहीं है, हमको भागवत पाने की क्या जरूरत, हमें इसी से करता। और एक आदमी है दुराचारी है, झूठ भी बोलता है, दुकान पाठ भी है उसको, सभी कुछ है और साधुता भी देखने में कुछ नहीं है, किंतु वो जैसे होता है सवेरे उठते ही भगवान कहा संतों का है। मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ, मेरा चरित्र ठीक है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और वो जो सच होता है दूसरों का उपकार करता है सब कुछ करता है, उसमें सब गुण है, संसार भी छोड़ दिया है कि तू भगवान का भजन नहीं कर, सब दोनों में कौन अच्छा है,
भगवान का
हाँ, तो इसीलिए अभी क्योंकि वो जल्दी से वो कोर्स पास करके वो घर, और ये अभी हजार जन्मों में नहीं जाए, इसलिए बैरोमीटर हम लोगों का होता है, ये देखते हैं कि वो जैसा भी व्यक्ति हो उसमें भक्ति की गई सदाचार और ये सफर हमें मिला, कितना सदाचारी है, कितना झूठ बोलते हैं सच बोलते हैं, कितना बैरागी है, देखते हैं कि चौल फल खाते हैं हम उसको भोगी करते हैं, एक फल खाने वाला राबड़ी खाता है हम चावल नहीं खाए, और राबड़ी खाता है दूध सब फलों का लेता है, तो ये क्या चीज है, भोगी नहीं है, भोगी नहीं हम उसको त्यागी नहीं है,
आपकी उसने कैसे सुना था, उसने आपने कहा था भर्ती बढ़ रही है, इसकी माप यह है कि जीनता कितनी आ रही है।
इसको देखा हमने आपके साथ में गए, कौन है तुम ना क्या बड़ा थी बड़ा किसी पत्नी। और दूसरा हम बैरोमीटर है जीनता को हम कैसे समझेंगे, जीनता ऐसी होगी तब से ये कपटता बदमाश है पक्का अव्वल बदमाश है उसको हम बैरोमीटर जीनता का कैसे पकड़ते हैं, देखें कि हरी कथा सुनने में नाम के द्वारा भी नहीं पकड़ सकते। यदि हरी कथा में रुचि है जितना भी गया विचार कोई है।